लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आप्रवासियों, शरणार्थियों और युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि शिक्षा पाने के उनके अधिकार का सदैव सम्मान किया जाए, जो एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में देश ने सोमवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने की घोषणा की है। गौरतलब है कि अमेरिका 1948 में वजूद में आए WHO का सह संस्थापक सदस्य देश है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन कार्यकारी आदेशों पर खेद प्रकट किया है जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की अमेरिकी सदस्यता को समाप्त करने और पेरिस जलवायु समझौते से हट जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। UN एजेंसियों ने मंगलवार को व्यक्त की गई प्रतिक्रिया में अमेरिका के इन आदेशों से सार्वजनिक स्वास्थ्य और वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने के प्रयासों पर संभावित नकारात्मक प्रभाव को उजागर किया है। WHO के प्रवक्ता तारिक ने व्हाइट हाउस में नए राष्ट्रपति द्वारा एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटों बाद कहा, WHO को इस घोषणा पर खेद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का इरादा रखता है। हमें उम्मीद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस पर विचार करेगा। अमेरिका के इस कार्यकारी आदेश के तहत 12 महीनों के भीतर WHO में अमेरिका की भागीदारी समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2020 में WHO से हटने के लिए कदम उठाए थे, लेकिन उनके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने उस कदम को उलट दिया था। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि दुनिया अभूतपूर्व चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन 2025 में आशा बनाए रखने के कारण भी मौजूद हैं। लंबे समय से प्रतीक्षित गाजा युद्ध विराम, जलवायु कार्यवाही, असमानता से निपटना और सार्वजनिक भलाई के लिए AI का उपयोग करना। उन्होंने UN महासभा को अपने संबोधन में वर्ष 2025 के लिए अपनी प्राथमिकताएं पेश करते हुए कहा कि उथल पुथल भरे इस दौर में लोगों के लिए उम्मीद के सहारे आगे बढ़ना होगा, ताकि हर किसी के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने सप्ताह UN महासभा को अपने वार्षिक संबोधन में कहा कि दुनिया हिंसक टकरावों से लेकर बढ़ती असमानता और जलवायु परिवर्तन तक अनेक संकटों से जूझ रही है, मगर उन्होंने सचेत किया कि इसके बावजूद प्रगति हासिल करना संभव है और इसलिए आशा का दामन थामे रखना होगा। महासचिव गुटेरेश कह रहे थे, दुनिया में मची उथल पुथल से उपजी मायूसी को समझा जा सकता है, मगर जब हम इस वर्ष आगे की दिशा में देखते हैं तो हमें प्रगति और संभावनाओं से नजर नहीं हटानी होगी। उन्होंने लेबनान में युद्ध विराम का उल्लेख किया जिसका पालन किया जा रहा है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हुई है, बाल मृत्यु दर, HIV संक्रमण और मलेरिया के कारण होने वाली मौतों में गिरावट आई है। वहीं स्वच्छ ऊर्जा, हरित विकास के क्षेत्र में देश अपने संकल्पों को मजबूती दे रहे हैं, मगर उन्होंने आगाह किया कि हिंसक टकराव, मानवाधिकार हनन और टेक्नोलॉजी के बेरोकटोक इस्तेमाल से समस्याओं का अंबार भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने गाजा, यूक्रेन, सूडान, हेती समेत अन्य देशों और क्षेत्रों में चुनौतियों का उल्लेख किया। महासचिव गुटेरेश ने जलवायु संकट से निपटने के लिए एक साहसिक दृष्टि को अपनाने की पुकार लगाई। UN प्रमुख ने नफरत भरे संदेशों, हेट स्पीच का मुकाबला करने पर बल दिया और कहा कि AI और अन्य टेक्नोलॉजी का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना होगा, सभी के लिए समान अवसर पैदा करने होंगे।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने कहा है कि भू राजनैतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन की बढ़ती लागत और अनसुलझे कर्ज मुद्दे श्रम बाजारों पर दबाव डाल रहे हैं, जिसके कारण आर्थिक पुनर्बहाली की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। युवा लोगों को बहुत अधिक बेरोजगारी दर का सामना करना पड़ा, जिसमें सुधार के बहुत कम संकेत हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ये रिपोर्ट वैश्विक अर्थव्यवस्था में आ रही सुस्ती को उजागर करती है। इससे श्रम बाजार प्रभावित हो रहे हैं और पिछली आर्थिक मंदी से उबरने की प्रगति में बाधा आ रही है। 2024 में दुनिया भर में बेरोजगारी की दर 2023 की तरह लगभग स्थिर रही, मगर युवाओं को अधिक बेरोजगारी दर का सामना करना पड़ा और इसमें सुधार के संकेत कम हैं। कम आय वाले देशों को अपने नागरिकों के लिए अच्छे रोजगार सृजित करने में सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था ने मध्यम गति से विस्तार करना जारी रखा, मगर ये रफ्तार वर्ष के अंत में धीमी हो गई। वैसे तो मुद्रास्फीति की दर में कमी आई है, मगर अर्थव्यवस्था फिलहाल कोविड महामारी से संबंधित नुकसान से पूरी तरह उबर नहीं पाई है। वास्तविक मजदूरी केवल कुछ अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ी है और अधिकांश देश अब भी पिछले संकटों के प्रभावों से उबर रहे हैं। 2024 में दुनिया भर में ऐसे लोगों की अनुमानित संख्या 40 करोड़ से अधिक पहुंच गई जो कामकाज करना चाहते हैं, मगर उनके पास रोजगार परक अवसर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के इस अध्ययन में हरित ऊर्जा और डिजिटल टेक्नोलॉजी में रोजगार अवसरों में वृद्धि की संभावना पर बल दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार अवसर दुनिया भर में 1.5 करोड़ से अधिक बढ़े हैं। हालांकि इसमें असमानता है और ये करीब 50% पूर्वी एशिया में ही केंद्रित है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि दुनिया संकटों के एक असाधारण झुंड का सामना कर रही है, जिसके कारण 30.5 करोड़ लोगों को मानवीय सहायता की तत्काल आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस स्थिति का सामना करने के लिए वर्ष 2025 के लिए अपनी स्वास्थ्य आपातकालीन अपील के माध्यम से दुनिया भर में जीवन रक्षक स्वास्थ्य सहायता मुहैया कराने के लिए 1.5 अरब डॉलर धनराशि जुटाने की अपील जारी की है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडिनोम गेब्रेसस ने गुरुवार को यह अपील जारी की है, जिसमें मौजूदा 42 स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए तत्काल प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। डॉक्टर टेड्रोस ने अपील जारी करते हुए कहा,
लास्ट ईयर वी रिस्पॉन्डेड टू 51 इमरजेंसीज इन 89 कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स आउटब्रेक्स क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स।
डॉक्टर टेड्रोस कह रहे थे कि गत वर्ष हमने 89 देशों में 51 आपात स्थितियों के खिलाफ स्वास्थ्य कार्रवाई की थी, जिनमें टकराव व युद्ध, प्रकोप, जलवायु संबंधी आपदाएं और अन्य आपात स्थितियां शामिल थीं। WHO का अनुमान है कि वर्ष 2025 के दौरान 30 करोड़ से अधिक लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता होगी। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि ये अपील केवल संसाधन उपलब्ध कराने के बारे में नहीं है, ये WHO को जीवन बचाने, स्वास्थ्य के अधिकार की रक्षा करने और ऐसे स्थानों पर आशा प्रदान करने में सक्षम बनाने के बारे में है, जहां अक्सर कोई उम्मीद नहीं होती है।
भारत में यूनिसेफ ने ओडिशा प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर बच्चों, युवाओं, माता पिता व समुदाय के सदस्यों को बाल विवाह का चलन रोकने के लिए एकजुट किया है। इस पहल को अद्विका नाम दिया गया है। अद्विका अर्थात मैं अद्वितीय हूँ। ओडिशा सरकार ने 2019 में यूनिसेफ के सहयोग से 2030 तक प्रदेश में बाल विवाह को खत्म करने के लिए 5 वर्षीय 2019 से 2024 तक रणनीतिक कार्य योजना SAP शुरू की। इस योजना में विभिन्न विभाग, नागरिक समाज, समुदाय, परिवार, किशोर और युवाजन को शामिल किया गया है। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
जगत के सृजन हार तेरी हो जय जयकार।
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। अपने हृदयों में जो आशा है उसे नम्रता से साझा करें। संत पेत्रुस के पत्र से लिया गया यह वाक्य इस वर्ष 59वें विश्व सामाजिक संप्रेषण दिवस का विषय है, जिसे प्रतिवर्ष 24 जनवरी को कैथलिक कलीसिया संत फ्रांसिस द सेल्स के पर्व दिवस पर मनाती है। 59वें विश्व सामाजिक संप्रेषण दिवस के उपलक्ष्य में अपना विशिष्ट संदेश प्रकाशित कर संत पापा फ्रांसिस ने कहा, आज के इस समय में जब गलत सूचना और ध्रुवीकरण का बोलबाला है तथा सत्ता के कुछ केंद्र अभूतपूर्व मात्रा में डाटा और सूचना को नियंत्रित कर रहे हैं, मैं आप पत्रकारों और संचारकों से कहना चाहूंगा कि मैं आपके काम के महत्व से भलीभांति परिचित हूं। संचार माध्यमों में दूसरों के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी को रखने के आपके साहसिक प्रयास वास्तव में आवश्यक हैं। संत पापा ने कहा कि कलीसिया द्वारा इस वर्ष मनाई जा रही जयंती इस उथल पुथल के समय में कृपा का एक महान क्षण है, और इसीलिए मैं आप सबको पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को आशा के संचारक बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। उन्होंने कहा, आज प्रायः संप्रेषण माध्यम लोगों के बीच आशा का संचार करने के बदले भय और निराशा तथा पूर्वाग्रह और आक्रोश, कट्टरता और यहां तक कि घृणा को प्रश्रय देते हैं। आज का संप्रेषण माध्यम अक्सर सहज प्रतिक्रियाओं को भड़काने के लिए वास्तविकता को सरल बना देता है। शब्दों का इस्तेमाल उस्तरे की तरह करता है। यह झूठ या चालाकी से विकृत जानकारी का इस्तेमाल करके लोगों को उत्तेजित, भड़काने या चोट पहुंचाने वाले संदेश भेजता है। उन्होंने कहा कि संचार माध्यमों को निरस्त्र करना और उसमें से आक्रामकता को समाप्त करना जरूरी है। वास्तविकता को नारों तक सीमित कर देने से कभी मदद नहीं मिलती। उन्होंने कहा, हम सभी देखते हैं कि कैसे टेलीविजन टॉक शो से लेकर सोशल मीडिया पर मौखिक हमलों तक यह जोखिम बना रहता है कि प्रतिस्पर्धा, विरोध, हावी होने और अधिकार करने की इच्छा तथा जनमत के साथ छेड़छाड़ का प्रतिमान प्रबल होता रहता है। संत पापा ने सचेत किया कि इस तरह के माहौल में हम लोगों की प्रतिष्ठा और गरिमा को भुला बैठते हैं। हम उनका उपहास और मजाक उड़ाने के लिए उनकी व्यक्तिता और गरिमा की अवहेलना कर देते हैं तथा आशा के संचार की भावना को ही खो देते हैं। जैसा कि डॉन टोनिनो बेलो ने कहा है, सभी संघर्ष तब शुरू होते हैं जब व्यक्तिगत चेहरे पिघल जाते हैं और गायब हो जाते हैं, जबकि हम सबको आशा के संचार का प्रयास करना चाहिए। संत पापा ने कैथलिक संचार माध्यम के कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे संत पेत्रुस का आमंत्रण स्वीकार कर अपने हृदयों में यीशु मसीह पर श्रद्धा रखें, क्योंकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के माध्यम से सदैव हमारे साथ रहने का यीशु ख्रीस्त का वादा हमें सभी आशाओं के विरुद्ध भी आशा रखने में सक्षम बनाता है। संत पापा ने कहा कि वे एक ऐसे संचार का सपना देखते हैं जो भ्रम या भय को बढ़ावा न दे बल्कि आशा का कारण दे सके। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में और उसके ओर छोर सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार इंस्पेक्टोरेट यानी निरीक्षणालय में कार्यरत पुलिस कर्मियों को गुरुवार को संत पापा फ्रांसिस ने वैटिकन शहर और इसके ओर छोर सुरक्षा कायम रखने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। संत पापा फ्रांसिस ने निदेशकों और पुलिस अधिकारियों को समर्पण व्यावसायिकता और उदारता के साथ संपादित उनके काम के लिए धन्यवाद दिया तथा उन्हें संत पेत्रुस महागिरजाघर और रोम के अन्य महागिरजाघरों के पवित्र द्वारों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। विशेष रूप से उन्होंने कलीसिया के परमाध्यक्ष और उनके सहयोगियों संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण के आसपास के तीर्थयात्रियों और पर्यटकों तथा पूरे इटली में उनकी प्रेरित यात्रा में शामिल सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल आपात कोष यूनिसेफ ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के लिए अपना विशेष संदेश जारी कर इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया है कि 2024 में जलवायु परिवर्तन के कारण 85 देशों में 24 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हो गए। यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित एक नवीन अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन का प्रकोप संपूर्ण विश्व पर आच्छादित है। केवल इटली में ही सितंबर माह में मूसलाधार बारिश और बाढ़ आई जिससे 9 लाख से अधिक छात्रों की कक्षाएं बाधित हुई हैं। बताया गया कि पिछले वर्ष खराब मौसम के कारण विश्व भर में 7 में से एक छात्र कक्षा में उपस्थित नहीं हो सका। कहा गया कि विगत वर्ष गर्म लहरें मुख्य जलवायु जोखिम थीं, जिसके कारण स्कूल बंद करने पड़े थे। अकेले अप्रैल माह में 10 करोड़ 18 लाख से अधिक छात्र इससे प्रभावित हुए थे। यह भी बताया गया कि दक्षिण एशिया विश्व में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा, जहां 12 करोड़ 80 लाख छात्रों को मौसम संबंधी स्कूल व्यवधानों का सामना करना पड़ा। विश्वव्यापी कैथोलिक उदारता संगठन कारितास की इताली शाखा ने युद्धरत गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 7 लाख यूरो के अनुदान का ऐलान किया है। कारितास इटली द्वारा प्रकाशित एक वक्तव्य में कहा गया कि इजराइल और गाजा के 470 दिनों के युद्ध के कारण भारी जनहानि हुई तथा व्यापक मानवीय संकट उत्पन्न हुआ। अंततः युद्ध विराम पर सहमति होने के बावजूद गाजा में स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है, जहां भोजन, चिकित्सा आपूर्ति, आश्रय और आवश्यक सेवाओं की भारी कमी है। वक्तव्य में इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया कि पश्चिमी तट पर हिंसा में वृद्धि ने उस देश की संपूर्ण आबादी की मानवीय आवश्यकताओं को और अधिक बढ़ा दिया है, जहां लाखों लोग भयंकर जीवन स्थितियों का सामना कर रहे हैं। आवश्यक बुनियादी ढांचे के विनाश, जान माल की हानि, विस्थापन और स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालियों के पतन के कारण स्थिति और भी अधिक गंभीर हो उठी है। कारितास के वक्तव्य के अनुसार इन चुनौतियों के जवाब में कारितास नेटवर्क ने स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य तथा आर्थिक सहायता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों की एक नई योजना के साथ मानवतावादी लोकोपकारी सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुनः प्रकट किया है। कहा गया कि इस कार्य को अंजाम देने के लिए कारितास की इतालवी शाखा ने 7 लाख यूरो के नए आवंटन से पुनर्निर्माण योजना के सह वित्त पोषण का निर्णय लिया है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।